नमस्कार, दीप प्रिंट सुप्रभात में आपका स्वागत है। मैं अल्बिना खातून आज आपको पढ़कर सुना रही हूँ अपूर्वा मंदानी की एक रिपोर्ट, जिसमें वह बता रही है कि सीबीआई पुणे पुलिस मास्टरमाइंड को ढूंढने में विफल रही और दाभोलकर हत्याकांड में फैसले में कोर्ट ने क्या कहा। पुणे की एक ट्रायल कोर्ट ने 2013 में तर्कवादी डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की गोली मारकर हत्या करने के लिए दो लोगों को दोषी ठहराया, लेकिन कहा कि पुणे पुलिस और केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच यह पहचान करने में विफल रही कि हत्या का मास्टरमाइंड कौन था। अदालत ने हत्या के तीन अन्य आरोपियों को भी बरी कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रभाकर पी यादव ने कहा कि हत्या को दो दोषियों ने अंजाम दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि अपराध के पीछे मुख्य मास्टरमाइंड कोई और है। अदालत ने आगे कहा कि पुणे पुलिस और सीबीआई आत्मनिरीक्षण करना होगा कि क्या यह उनकी विफलता है या फिर सत्ता में किसी व्यक्ति के प्रभाव के कारण उनकी ओर से जानबूझकर निष्क्रियता की गई है। कोर्ट ने सचिन प्रकाश राव आंदुरे और शरद भाऊ साहेब कालिस्कर को उम्र कैद और 5,00,000 रुपए की जुर्माना की सजा सुनाई। उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या और 34 सामान्य इरादा के साथ साथ भारतीय शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया था। हालांकि अदालत ने सभी 5 आरोपियों, जिनमें डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, शरद चंद तावड़े, संजीव गजानन पुनालेकर और विक्रम विनय भावे शामिल है, को गैरकानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम 1967 और आपराधिक साजिश आईपीसी की धारा 120B के तहत आरोपी से बरी कर दिया। तर्कवादी संगठन महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक दाभोलकर एक सामाजिक कार्यकर्ता और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने वाले आंदोलनकारी थे। 20 अगस्त 2013 को पुणे के शनिवार पेट इलाके के पास ओंकारेश्वर पुल पर दो मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने उस वक्त उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी जब वह सुबह की सैर पर निकले थे। 2014 में सीबीआई को स्थानांतरित होने से पहले प्रारंभिक जांच पुणे अपराध शाखा द्वारा की जा रही थी। शुक्रवार के फैसले में कहा गया कि वर्तमान मामला बहुत गंभीर है और राष्ट्रीय महत्व का है। न केवल डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या की गई है, बल्कि उनकी विचारधारा को खत्म करने का प्रयास भी किया गया है। फैसले में यह भी कहा गया कि सनातन संस्था और उसके सहयोगी संगठनों हिंदू जनजागृति समिति, वारकरी संप्रदाय और अन्य ने दाभोलकर और MANS को हिंदू विरोधी मानते हुए विधेयक का विरोध किया। अभियोजन पक्ष ने दाभोलकर को सनातन संस्था के बीच इस दुश्मनी को हत्या का मुख्य मकसद बताया। विधेयक अंततः 24 अगस्त 2013 को एक अध्यादेश के रूप में पारित किया गया। सीबीआई ने अदालत में दलील दी कि पहले आरोपी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह तावड़े कोल्हापुर में सनातन संस्था के समन्वयक थे और दाभोलकर के साथ उनके व्यक्तिगत मतभेद थे। जून 2016 में गिरफ्तार तावड़े के खिलाफ प्रारंभिक आरोप पत्र मुख्य रूप से सह अभियुक्तों के साथ हत्या के साजिश पर केंद्रित था। सनातन संस्था से जुड़े दो अंतिम हत्या के दोषियों सचिन अंदुरे और शरद कालिस्कर को बाद में अगस्त में अंदुरे और सितंबर 2018 में कालिस्कर को महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते द्वारा एक अलग मामले में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें फरवरी 2019 में दायर एक पूरक आरोप पत्र में नामित किया गया था। आगे की जांच में मुंबई स्थित वकील पुनालेकर और उनके सहायक भावे के नाम भी सामने आए। फैसले के अनुसार सितंबर 2012 में पुनालेकर ने दाभोलकर को एक पत्र लिखा था, जिसमें गणेश विसर्जन के कारण जल प्रदूषण पर दाभोलकर के विचारों का विरोध किया गया था। सीबीआई ने यह भी पाया कि कालिस्कर पुनालेकर के मुंबई कार्यालय का दौरा किया था, जहां भावे भी मौजूद थे। सीबीआई ने आरोप लगाया कि भावे ने घटना से लगभग 15 दिन पहले टो लेने के लिए अंदुरे और कालिस्कर के लिए मोटरसाइकिल की व्यवस्था की थी। पुनालेकर और भावे को मई 2019 में गिरफ्तार किया गया था और उस साल नवंबर में दायर एक अन्य पूरक आरोप पत्र में उनका नाम लिया गया था। पुनालेकर पर सबूत नष्ट करने के अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया गया था। यह आरोप लगाया गया था कि जून 2018 में कालिस्कर पुनालेकर के कमरे में गए थे, जब भावे भी वहां मौजूद थे। इसके बाद पुनालेकर ने कथित तौर पर कालिस्कर को पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या सहित हत्या के मामलों में इस्तेमाल किए गए फायर आर्म्स को नष्ट करने की सलाह दी थी। इसके बाद कालिस्कर ने कथित तौर पर 4 देशी पिस्तौलों एक खाड़ी में फेंक दी। हत्या का हथियार कभी बरामद नहीं हुआ। अपने बचाव में आंदुरे और कालिस्कर ने बहाना बनाते हुए कहा कि वे दाभोलकर की हत्या के दिन अपनी बहनों के साथ थे, क्योंकि उस दिन रक्षाबंधन था। कालस्कर ने आगे आतंकवाद निरोधी दस्ते और सीबीआई पर कदाचार का आरोप लगाया। उन्होंने 2006 और 2008 के मालेगांव विस्फोटों का जिक्र करते हुए दावा किया कि एटीएस अधिकारियों ने विस्फोटक रखे और मुसलमानों और हिंदुओं दोनों को अलग अलग मामलों में झूठा फंसाया। उनकी लिखित दलीलों में वर्ष 2006 से लेकर 2021 में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के पास विस्फोटक रखे जाने के मामले तक के मामलों का जिक्र करते हुए एटीएस पर आरोप लगाया गया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि जांच के दौरान पुलिस द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया गया था। पुनलेकर ने एटीएस पर भी ऐसे ही आरोप लगाए। उन्होंने अदालत को बताया कि 2008 से वह थाने, मंडगांव आदि में दर्ज विस्फोटकों के कई मामलों में आरोपियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि एटीएस आरडीएक्स लगा रही थी और निर्दोष लोगों को फंसा रही थी। हालांकि कुछ गवाहों की जांच और जिरह के बाद अदालत ने कहा कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सनातन संस्था हिंदू जन जागृति समिति और सहयोगी हिंदू संगठन मृतक डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर के खिलाफ कड़ी दुश्मनी पाल रही थी। बचाव पक्ष ने दाभोलकर की मौत के कारण पर विवाद करने की भी कोशिश की थी, यह दावा करते हुए कि उनके शरीर पर एक महिला के लंबे बाल पाए गए थे, लेकिन उस दिशा में कोई जांच नहीं की गई। अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की मृत्यु के बाद भी बचाव पक्ष ने उनकी छवि खराब करने के हर अवसर को भुनाने की कोशिश की है। अदालत ने बचाव पक्ष के ऐसे अन्य प्रयासों को भी निंदा की। उदाहरण के लिए इसमें बताया गया है कि बचाव पक्ष के वकीलों में से एक ने दाभोलकर की मृत्यु के 5 साल से अधिक समय बाद उनके MANAS द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका का हवाला दिया, जिसमें सार्वजनिक रूप से हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले आंदोलन पर जोर दिया गया था। अदालत ने कहा यह दृष्टिकोण बहुत अजीब और निंदनीय है। अभियोजक पक्ष ने 2 प्रमुख चश्मदीदों को अदालत में पेश किया। एक पुणे नगर निगम का सफाई कर्मचारी था जो दाभोलकर पर हमले के समय अपराध स्थल के पास काम कर रहा था। दूसरे पुणे निवासी था जिसने अपनी बालकनी से इस घटना को देखा था। अदालत ने उनकी गवाही को मजबूत माना। एक अन्य गवाह ने दावा किया था कि आंदूरे ने दाभोलकर की हत्या के बारे में उसके सामने न्यायेतर कबूलनामा किया था। इन सभी गवाहियों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि आंदूरे और कालस्कर ने वास्तव में दाभोलकर की गोली मारकर हत्या की थी। अन्य आरोपियों के लिए अदालत ने कहा कि तावड़े के खिलाफ मकसद के सबूत थे और पुनलेकर और भावे के खिलाफ उचित संदेह था। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि अभियोजन पक्ष अपराध में उनकी संलिप्तता स्थापित करने में विफल रहा है। इसमें कहा गया कि मृतक की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह मामला राष्ट्रीय महत्व का है। जहां तक UAPA आरोपों का सवाल है, अदालत ने मुंबई गृह विभाग से अभियोजन के लिए दी गई मंजूरी को वैध नहीं पाया। ऐसा तब हुआ जब अदालत ने पाया कि गृह विभाग मुंबई के तत्कालीन उप सचिव तावड़े, पुनलेकर और भावे के लिए मंजूरी की समय सीमा का पालन करने में विफल रहे थे और मुंबई गृह विभाग के तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव ने आंदूरे और कालस्कर के लिए CBI के मंजूरी प्रस्ताव को लेकर अपना दिमाग नहीं लगाया। जहां तक सजा की बात है तो सरकारी वकील ने यह मानते हुए यह दुर्भतम मामला नहीं है आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग नहीं की थी, इसलिए अदालत ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सुनने के लिए धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी दी प्रिंट पॉड के अगले एपिसोड में।